दंपतियों को आशीर्वाद। श्लोक संख्या 26 से शुरू कर रहे हैं। तो अभी तक हमने सुना कि ब्राह्मणों की पत्नियां अपने पतियों से बिना पूछे, बिना अनुमति लिए भगवान कृष्ण को भोजन देने के लिए आ गई, तो भगवान हंसते हुए उनसे बात कर रहे हैं। और भगवान हंसते हैं, क्यों हंस रहे हैं? एक कारण ये भी है कि वे बहुत तनाव में हैं। जब कोई व्यक्ति बहुत तनाव में हो तो उससे हंस करके बात की जाए तो तनाव दूर होता है। तो भगवान हंस करके बात कर रहे हैं और उनको प्रोत्साहन दिया कि तुमने अच्छा कार्य किया, ये तुम्हारी योग्यता है, ये तुम्हारी योग्यता है जो कि तुमने ऐसा काम किया है। क्योंकि वे सोच रही थी कि शायद कुछ गलत भी हो रहा है कि वो अपने पतियों से बिना पूछे यहाँ आ गए हैं, भगवान के पास आ गए हैं। तो भगवान उनके तनाव को दूर कर रहे हैं, हंस भी रहे हैं और साथ साथ उनके कार्य का समर्थन कर रहे हैं। तो भगवान अब क्या कह रहे हैं? निश्चय ही कुशल लोग जो अपने असली लाभ को देख सकते हैं, वे मेरी अहेतु की और अविच्छिन्न भक्ति करते हैं, क्योंकि मैं ही आत्मा को सबसे प्रिय हूं। ननबद्धा मई कुरवंती कुशला स्वाथ दर्शिन अहेतु कैदान भक्ति आत्मे प्रिय यथा। तात्पर्य में लिखा है कि भगवान कृष्ण आत्मप्रिय हैं क्योंकि हर एक के प्रेम के असली लक्ष्य हैं। यद्यपि हर व्यक्ति की अपनी रुचि और अपनी स्वतंत्रता होती है, किंतु आखिर प्रत्येक जीव क्या है? भगवान का अंश है। इस तरह हर एक का आदि प्रेम आकर्षण भगवान श्री कृष्ण के निमित्त है। तो भगवान क्या कह रहे हैं अब इनसे? आत्मा के कारण ही जीव का प्राण, बुद्धि, मन ये सब प्यारे लगते हैं। आत्मा के कारण ही मित्र हैं, शरीर है, पत्नी है, संतान, ये सब। अतएव अपने आप से बढ़कर कौन सी वस्तु अधिक प्रिय हो सकती है? प्राण बुद्धि मन स्वात्म दारापत्य धनादय यत संपर्कात् प्रिया आसन तथा कौन वे परा प्रिय। तात्पर्य में लिखा है कि आत्मा शब्द जो है, यत संपर्कात् शब्द आत्मा और परमात्मा के संपर्क का द्योतक है। परमात्मा ही प्रत्येक जीव का मूल है। कृष्ण भावनामृत उत्पन्न करने से मनुष्य स्वरूप सिद्ध हो जाता है और इस तरह उसकी प्राण शक्ति, बुद्धि, मन ये सभी श्री कृष्ण भावनामृत के प्रभाव से बढ़ जाते हैं। शरीर, परिवार, संपत्ति ये सब बढ़ते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कृष्ण भावनामृत आत्मा का परमात्मा से सर्वोत्कृष्ट संगम है। अब भगवान क्या कह रहे हैं? अब आदेश दे रहे हैं। उन्होंने उनका समर्थन किया, प्रशंसा की और अब आदेश दे रहे हैं। भगवान क्या कहते हैं? अतएव तुम लोग यज्ञ स्थल को लौट जाओ, क्योंकि तुम्हारे पति जो विद्वान ब्राह्मण हैं, गृहस्थ हैं और उन्हें अपने यज्ञ संपन्न करने के लिए तुम्हारी आवश्यकता है। पत्नी के बिना यज्ञ पूरा नहीं हो सकता है। जो गृहस्थ व्यक्ति है जो यज्ञ करता है, तभी आद देव यह जन्म पति हो वो जो जाते सशत्रम पारियमाधिर गृह में भी नहा। अब वो ब्राह्मण पत्नियां क्या कहती हैं भगवान से? उनका कुछ संकट है, अभी उनके सामने कुछ समस्या है। अब ध्यान से सुनिए कि वो ब्राह्मण पत्नियां भगवान से क्या कहती हैं। भगवान ने तो कहा कि तुमने बहुत अच्छा कार्य किया। क्या भोजन लाए और भोजन छोड़ करके अब चले जाओ, है ना? तो ये भी कार्य अच्छा है और अब तुम्हारा वापस जाना भी अच्छा है। तो अब उनकी जो समस्या है अब सुनिए वो क्या कहती हैं। उन्होंने कहा, हे विभु, आप ऐसे कड़वे वचन ना कहिए। ये कड़वे वचन है। क्या कड़वा? वापस चले आओ। आपने मीठी बातें तो कही कि अच्छा किया तुम आई, अब आप कड़वी बात बोल रहे हो, मीठा कड़वा सब मिक्स कर रहे हो मीठा बोला आपने, आप कड़वा बोल रहे हो तो कहते हैं कड़वा मत बोलिए। आपको चाहिए कि आप अपने उस वचन को पूरा करें कि अपने भक्तों को सदैव आप प्रतिदान करते हैं, क्योंकि अब हम आपके चरणों को प्राप्त हैं, अतः आप इतना चाहते हैं कि हम वन में ही रहें और तुलसी दल की उन मालाओं को अपने सिरों में धारण करें जिन्हें आप चरणों से ठुकरा देते हैं। आपकी ठुकराई हुई जो तुलसी माला है वो अपने सिर में धारण करें, यहीं वन में रहें और क्या करें, जोगिन, हम लोग जोगिन बनेंगे, योगिनी बनेंगे जंगल में रह करके। और हम अपने सारे भौतिक संबंध अब त्यागने को तैयार हैं, है ना। अब वो जो है, जो जीवन है नरक जैसा जीवन है, वो हम नहीं चाहती हैं उसमें जाना। नेवं विभोर्हति भवान गति तुम निशंसम सत्यम गुरु सुनिगमम तव पाद मूलम प्राप्ता वयम तुलसीदाम पदावसृष्टम केसर निवरुमति लंग समस्त बंधु। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के अनुसार श्री कृष्ण ने उन ब्राह्मण पत्नियों को ये सारा किया होगा कि तुम उच्च ब्राह्मण कुल की हो तो एक ग्वाले के चरणों में कैसे शरण पाओगी भगवान का ये तर्क है। तो उन महिलाओं ने उत्तर दिया होगा कि चूंकि हम पहले से ही आपके चरणों की शरण में हैं और आपकी सेविका बनना चाहती हैं, अतएव हम अपने को ब्राह्मण कुल के सदस्य के रूप में अब अपनी पहचान नहीं करती हैं, मिथ्या पहचान नहीं करती, आप हमारे वचनों से आसानी से इसकी पुष्टि कर सकते हो। तो कृष्ण उत्तर दिया होगा, मैं तो गोपाल हूं और मेरी असली जो सेविकाएं हैं या प्रेमिकाएं हैं वे तो गोपियां हैं, मैं गोपाल हूं तो गोपियां मुझसे प्रेम करती हैं, मैं गोपियों से प्रेम करता हूं। तो उन ब्राह्मण पत्नियों ने उत्तर दिया होगा कि अगर हैं तो रहने दो, वो रहें आपकी सेविकाएं, और हम यदि आप अपने संबंधियों के समक्ष ब्राह्मणियों को दासी बनाते हुए घबरा रहे हैं तो उन्हें बाहर रहने दीजिए, हम आपको उलझन में नहीं डालना चाहते हैं, हम आपके गांव में भी नहीं रह जाएंगे बल्कि यहीं जंगल में रहेंगे, हम तो आपसे किंचित संबंध स्थापित करके अपना जीवन सफल बनाना चाहते हैं, किसी जंगल में ही रहेंगे अकेले, क्योंकि आपके साथ भी हम नहीं जा सकते वहां वृंदावन में, वहां पर गोपियां हैं तो हम यहीं पर ही वहां, ना वहां जाएंगे ना यहां जाएंगे, आपको भी तकलीफ ना हो और हम वहां भी तकलीफ नहीं पाना चाहती हैं तो यहीं पर रहें, उनका ये कहना है। इस तरह विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की दिव्य दृष्टि से हम ये जान पाते हैं कि ब्राह्मण पत्नियां दूर रहने और कृष्ण के चरण कमलों पर गिरी हुई अथवा आलिंगन करते समय उनकी प्रेमिकाओं के पांव तले रौंदी हुई तुलसी की पत्तियों को ग्रहण करने के लिए राजी हो गई हैं। उन्होंने इन तुलसी दलों को अपने सिरों में धारण करना स्वीकार किया। यदि कृष्ण उनसे पूछते तुम्हारे परिवार वाले क्या कहेंगे तो वे उत्तर देती हमने तो अपने तथाकथित संबंधियों की पहले से परवाह नहीं की क्योंकि हम आपका साक्षात दर्शन कर रहे हैं। अब वो आगे क्या कहती हैं, अब हमारे पति हमें शरण नहीं देंगे, अगर हम जाएं तो हमारे पति हमें शरण नहीं देंगे, हमारे माता पिता भी हमको नहीं स्वीकार करेंगे, ना पुत्र ना भाई मित्र असली संबंधी हमें वापस नहीं लेंगे, अब हमें कोई शरण नहीं देगा क्योंकि अब हमने अपने आप को आपके चरण कमलों पर अर्पित किया है, अब हमारे लिए कोई गति नहीं है, हे शत्रुसूदन अब हमारी इच्छा पूरी करो, अब हमारी कोई गति नहीं है। ग्रहण अंत नो न पतिया पितर सुतावा भ्रातृ बंधु सुहृदा कुते विचान्ये तस्मान् भवत् प्रपदयो पतितात्मनाम् नो नान्या भवेद् गतिररिन्दम् तन्विधेहि। तात्पर्य में विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने टीका की है कि ब्राह्मण पत्नियों ने अपनी युवावस्था से ही वृंदावन की स्त्रियों के मुख से भगवान कृष्ण के रूप गुण और माधुर्य का वर्णन सुन रखा था। किनसे? मालिन, मालिन भी सुनाती थी, जो मालिन माला बनाने वाली स्त्रियां वो भी सुनाती थी, और तंबोलिनी भी सुनाती थी, जो पान बनाने वाली हैं वो भी सुनाती थी कृष्ण के बारे में। तो कृष्ण के प्रति प्रेम का अनुभव उनको होता था, तो घर के कामों में उनका मन पहले से नहीं लगता है, कई सालों से उनका मन नहीं लग रहा है। उनके पति उन्हें निठल्ली देख करके संदेह करते हैं और बातचीत करने से कतराते रहते हैं उनके पति भी। अभी ब्राह्मण पत्नियां जो है अपने परिवार और पड़ोस का जो है ना बिल्कुल त्याग करने के लिए तैयार हो गई हैं, और बहुत क्षोभ के कारण कृष्ण के चरण कमलों पर अपने सिर रखकर चिल्ला रही हैं, उन्हें नमस्कार कर रहे हैं। तो ये जो श्लोक उन्होंने कहा है, ये गदगद वाणी से कहा है, उनका उनकी वाणी रुद्ध हो रही है जब वो बोल रही हैं इस प्रकार से। उन्होंने कृष्ण से प्रार्थना की कि वे उन्हें आशीर्वाद दें कि अब यही एकमात्र उनके गंतव्य हो, अरिंदम मैंने शत्रुओं को नष्ट करने वाले हैं। ये जो कहा है तो इसमें भाव यह है कि हमारी सब बाधाएं अब दूर करो आप। अब भगवान ने क्या उत्तर दिया आप सुनिए ध्यान से, भगवान क्या कहते हैं। भगवान ने उत्तर दिया, तुम ये विश्वास करो ना तो तुम्हारे पति तुम्हारा त्याग करेंगे, ना पिता ना भाई ना पुत्र संबंधी, कोई तुम्हारा त्याग नहीं कर सकता। मैं स्वयं जिसका अनुमोदन करता हूं तो देवता भी जो है ना उसका अनुमोदन करते हैं। तो भगवान कहते हैं किसकी हिम्मत है जो तुम्हारा अपमान करें, जिसको जिसका मैं सम्मान करता हूं उसका कौन अपमान कर सकता है। भगवान कहते हैं पतियो ना बेसो एरन पितृभ्रात्रे सुतादय लोका सबो मयो पेता देवात्यनु मनवते। तुम सबों का मेरे शारीरिक सान्निध्य में रहना निश्चय ही इस जगत के लोगों को अच्छा नहीं लगेगा, ना ही इस प्रकार से तुम मेरे प्रति अपने प्रेम को बढ़ा सकोगी। तुम्हें चाहिए कि तुम अपने मनों को मुझ पर स्थिर करो और तुम मुझे प्राप्त शीघ्र करोगी। न प्रीत ये नुरागाय यंग संगो नृणाम तन्मयो यही तन्मनोमय युंजाना अचिरान माम वाप्षत है। तात्पर्य में लिखा है भगवान ने संकेत किया कि सामान्य लोग नहीं चाहेंगे कि ग्वाल बाल के रूप में श्री कृष्ण ब्राह्मण स्त्रियों के बीच में इस प्रकार प्रेम करें। साथ ही वियोग में जो इनकी भक्ति और प्रेम बहुत बढ़ेगा, अगर दूर रहेंगे तो ज्यादा प्रेम बढ़ेगा। तो दूसरे शब्दों में यदि वे अपने मन को कृष्ण में स्थिर रहने देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि ये विधि जिसको वे अभी तक अपनाए चली आ रही हैं आजीवन चलती रहेगी। तो भगवान क्या कहते हैं, मेरे विषय में सुनने से मेरे प्रति प्रेम बढ़ता है, और मेरे अर्चा विग्रह का दर्शन करने से, मेरा ध्यान धरने से, मेरे नामों का और महिमा का कीर्तन करने से मेरे प्रति प्रेम बढ़ता है ना। अतः तुम लोग अपने घरों को लौट जाओ। श्रवणान दर्शना ध्यान मई भावो नु कीर्तन न तथा सन्निकर्षण प्रतियात ततो गृहान। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा इस तरह आज्ञा पाकर ब्राह्मण पत्नियां यज्ञ स्थल पर लौट गई। अब देखिए भगवान का आदेश पाकर के वो लौट गई, लेकिन कोई संभावना नहीं थी कि उनके पति उनको स्वीकार करेंगे। लेकिन बहुत आश्चर्य, बहुत बड़ा आश्चर्य हुआ। वो क्या हुआ कि ब्राह्मणों ने उन पत्नियों में कोई दोष नहीं निकाला, उन्होंने उनके साथ यज्ञ पूरा किया, सम्मान के साथ अपने पास बैठाया और यज्ञ की विधि पूरी की, सम्मान के साथ की बैठो। कोई आशा ही नहीं थी कि ऐसा व्यवहार करेंगे, और बिना कुछ बोले बिना कुछ पूछे कि क्यों गई थी कहाँ गई थी, बिना पूछे क्यों अब जाओ तुम्हारी जहां मर्जी जाओ, मैं तुम्हें स्वीकार नहीं करूंगा, कोई शब्द नहीं, सम्मान पूर्वक उन्होंने बुलाया और बैठाया और अपना यज्ञ पूरा किया उन्होंने। श्लोक में पढ़ाना। इत्युक्ता द्विजय पत्नस्ताम यज्ञवाटम पुनर्गताम तेचान सोयवस्था भी स्त्री भी सत्र मां सत्र में पारयन। तात्पर्य में लिखा है ब्राह्मण पत्नियों ने भगवान कृष्ण के आदेश का पालन किया और वे अपने पतियों के यज्ञ स्थल को लौट गई। लेकिन गोपियां, अब गोपियों का क्या हाल था? गोपियों को जब कृष्ण ने आदेश दिया था कि पूर्णिमा की रात को नृत्य करने के लिए वन में जब आई थी तो लौटने के लिए कहा था, लेकिन वो नहीं लौटी थी। लेकिन इन दोनों ने शुद्ध प्रेम प्राप्त किया। जो ब्राह्मण पत्नियां हैं वो भगवान के आदेश से लौट गई और जो गोपियां वो नहीं लौटी थी, वो तो भगवान के साथ नृत्य करने के लिए आई थी, लेकिन दोनों ने ही शुद्ध प्रेम प्राप्त किया। उनमें से एक स्त्री को उसके पति ने जबरदस्ती रोक रखा था। कहां पर? यज्ञ स्थल में। एक स्त्री को उसके पति ने जबरदस्ती रोक लिया था। जब उसने अन्यों के मुख से भगवान कृष्ण का वर्णन सुना तो उसने अपने हृदय के भीतर भगवान का आलिंगन किया और अपना भौतिक शरीर त्याग दिया और भव बंधन से छूट गई। तत्रैका विद्रता भरतराम भगवंतम यथा सुतम हृदय पे गोई है बेजहा देहम कर्मानुबंधनम। तात्पर्य है यहां पर वर्णित जो महिला है कृष्ण के प्रति विशेष रूप से समर्पित थी, उसने अपना भौतिक शरीर त्याग दे ही आध्यात्मिक शरीर प्राप्त किया और भगवान से जाकर के मिल गई। वहीं पर पहुंची जहां दूसरी स्त्रियां थी, वहीं पर वो भी पहुंची भगवान से मिलने के लिए, लेकिन वो शरीर से नहीं पहुंची, आध्यात्मिक शरीर से पहुंची। भगवान गोविंद ने अब ग्वाल वालों को चार प्रकार का भोजन खिलाया। चतुर्विधा श्री भगवत प्रसाद, चार प्रकार का भोजन कहता है वो, भक्ष्य और पेय लेय चोष्य, चार प्रकार का भोजन जो खाया जाता है, चबाया जाता है, जो पिया जाता है और चूसा जाता है और चाटा जाता है। हाँ, चोष्य चाटा जाता है। चार प्रकार का भोजन भगवान ने अपने सखाओं को खिलाया और फिर भगवान स्वयं भी खाते हैं। भगवान अपि गोविंद तेनेवान्नेन गोपकान् चतुर्विधेन आशयित्वा स्वयं च बुभुजे प्रभु। इस तरह अपनी लीलाएं संपन्न करने के लिए मनुष्य रूप में प्रकट होकर भगवान ने मानव समाज की रीतियों का अनुसरण किया। उन्होंने अपने गौओं, ग्वाल मित्रों और गोपियों को अपने सौंदर्य से प्रसन्न किया, अपनी वाणी से प्रसन्न किया, अपने कर्मों से प्रसन्न किया और आनंद लूटा भगवान ने। एवं लीला नर वपुर नृलोकम अनुशीलयन प्रेमे गो गोप गोपी नाम रमयन रूप वाकृत। अब देखो ये जो ब्राह्मण पत्नियां थी तो वे चिंता कर रही थी कि उन्हें कोई स्वीकार नहीं करेगा, लेकिन अभी उनका ही सम्मान कर रहे हैं उनके पति और अपनी निंदा कर रहे हैं। उनके पति अपनी निंदा कर रहे हैं और उनका सम्मान कर रहे हैं। ब्राह्मणों को चेत हुआ, बहुत अधिक पछताए। उन्होंने सोचा हमसे बहुत पाप हुआ है क्योंकि हमने सामान्य मनुष्य के वेश में प्रकट हुए ब्रह्मांड के दो स्वामियों की याचना अस्वीकार कर दी है। ब्रह्मांड के दो स्वामी कौन? कृष्ण और बलराम। ब्रह्मांड के दो स्वामियों की आज्ञा का तिरस्कार कर दिया है। अथान स्मृत्य विप्रास्ते अनुमतप्यं कृतागत यदि विश्वेश्वर योर याच्याम अहम विडम्बयो। तात्पर्य लिखा है भगवान कृष्ण और बलराम ने ब्राह्मणों को धोखा नहीं दिया, उन्होंने उनसे सीधे भोजन मांगा था। तो ब्राह्मण अपने आप को धोखा दिया, अपने आप को धोखा दिया। कृष्ण बलराम ऐसे सामान्य मनुष्य के लिए मोहित है जो उनको भी एक सामान्य व्यक्ति समझता है। क्योंकि ब्राह्मण पत्नियां भगवान की परम भक्त थी, इसलिए मूर्ख ब्राह्मणों को आध्यात्मिक लाभ हुआ और अंत में उन्हें चेत हो गया। अब ये ब्राह्मण लोग जो है ना, जब देखते हैं अपनी पत्नियों की पवित्रता को, तो अपनी पत्नियों की भगवान के प्रति, भगवान कृष्ण के प्रति दिव्य भक्ति और अपने को उस भक्ति से विहीन देख करके उन ब्राह्मणों को बहुत खेद हुआ। सत्संग का ये फल है। सत्संग में जो है व्यक्ति को फिर अपनी जो है दुर्दशा का पता चलता है कि मेरी कितनी खराब हालत है, ये कितने पवित्र हैं, मैं कितना अशुद्ध हूं, है ना। तो अपनी पत्नी को देखा कि ये कितनी पवित्र हो गई, कृष्ण को भोजन देकर के पवित्र हो गई, हम जीवन भर यज्ञ और तपस्या ही करते रहे और बेवकूफ के बेवकूफ बने रहे। इन्होंने कृष्ण को भोजन खिला करके अपना जीवन सफल कर लिया और हम बेवकूफ के बेवकूफ बने रहे तो बहुत खेद हुआ और अपने आप को धिक्कारने लगे, जीवन में क्या किया, सब बेवकूफी, जितना यज्ञ है, तपस्या है, जितना भी किया है, सब बेवकूफी है हमने जो किया है। और इन्होंने तो अपने जीवन का चरम फल प्राप्त कर लिया। दृष्ट्वा स्त्रीणाम भगवती कृष्ण भक्ति आत्मानम चयातया आत्मानम चयाहीनम अनुतत्ता व्यगरहयन। अब ब्राह्मण क्या कहते हैं, ये ब्राह्मण लोग क्या कहते हैं, धिक्कार है हमारा तीसरा जन्म जो हुआ उसको, धिक्कार है। तो वे ब्राह्मण पश्चाताप कर रहे हैं, क्या कहते हैं, धिक्कार है हमने तीसरा जन्म लिया, ये भी धिक्कार है, दूसरा जन्म, तीसरा जन्म। पहला जन्म होता है माता पिता के रज और वीर से, और दूसरा जन्म होता है द्विजाति संस्कार से, और फिर तीसरा जन्म और गायत्री मंत्र है और भी जो दूसरे दूसरे मंत्र मिलते हैं। तो तीन तीन जन्म हमारे जो है ना बेकार हो गए, हमारा ब्रह्मचर्य बेकार है, हमारी विद्वत्ता बेकार है, धिक्कार है हमारे उच्च कुल को, हमारे यज्ञों की निपुणता को भी धिक्कार है, हम सबको धिक्कार है क्योंकि हम कृष्ण से विमुख हैं। भिग जन्म नस्त्र विन्यतन धिंग व्रतम धिंग बहोग्यता धिकुलम धिक्रियादाक्षम विमुखा ये तथोक्षजे। तात्पर्य लिखा है कि तीन बार जो जन्म है, एक तो शारीरिक जन्म, दूसरा ब्राह्मण दीक्षा और तीसरा वैदिक यज्ञ करने के लिए दीक्षा। तो परम ब्रह्म भगवान कृष्ण की प्राप्ति ना होने पर ये सब व्यर्थ है, सब व्यर्थ है। अब ब्राह्मण क्या कहते हैं, भगवान की माया शक्ति बड़े बड़े योगियों को भी मोह लेती है, तो हमारी क्या विकास, ब्राह्मण होने के नाते हम सभी जाति के लोगों के आध्यात्मिक गुरु माने जाते हैं, फिर भी हम सच्चे स्वार्थ के लिए हम मोहित रह गए, हमारा स्वार्थ पूरा नहीं हुआ। नूनम भगवतो माया योगिनाम मत मोहिनी यन्वयं गुरवो नृणाम स्वार्थे मोह्यामहे द्विजाम। इन स्त्रियों का असीम प्रेम तो देखो, इन स्त्रियों में कितना प्रेम, इन्होंने अखिल विश्व के गुरु भगवान के प्रति जो प्रेम उत्पन्न कर रखा है, इस प्रेम ने गृहस्थ जीवन की आसक्ति, मृत्यु के बंधन को भी दूर कर दिया है। अहो पश्यत नारीणाम अपि कृष्णे जगद्गुरो दुरंद भावम यो विद्यन मृत्यु पाशाम गृहाभिधान। तात्पर्य लिखा है इस तरह पति पिता ससुर आदि इन स्त्रियों के जो गुरु या शिक्षक थे, किंतु ये स्त्रियां कृष्ण भक्त में पूर्ण हो चुकी हैं, जबकि पुरुषगण अज्ञान के गड्ढे में गिरे हुए हैं। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के अनुसार घर लौटने पर इन महिलाओं में दिव्य भावों के लक्षण प्रकट होने लगे, जैसे शरीर में कंपन पैदा हुआ, अश्रु, रोमांच और कृष्ण के नामों का उच्चारण पुकारने लगी। हरे कृष्णा। इस प्रकार से कृष्ण के नामों का उच्चारण करने लगी, उनका कंठ गदगद हो रहा है, नैनम गलदस्तुधार्य, ये चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि कब ऐसा होगा, तो इन यज्ञ पत्नियों में ऐसा प्रेम का लक्षण पैदा हो गया है ना। तो उनके जो पति हैं वो जब प्रेम के लक्षण देखते हैं तो कहते हैं हमारा जीवन तो बेकार हो गया है, हम इतने मंत्र पाठ करते रहे और इतना पापड़ बेलते रहे, सब बेकार हो गया, और इन्होंने कृष्ण प्रेम प्राप्त कर लिया। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर तो यहां तक कह डालते हैं कि कोई भले ही विरोध करे कि अपने पति के अलावा स्त्री को किसी अन्य पुरुष से प्रेम करना उचित नहीं है, किंतु यहां तो पति ही इशारा कर रहे हैं कि जगत गुरु कृष्ण के, कि वे जगत गुरु कृष्ण के बनावटी गुरु हैं, जो सारे ब्रह्मांड के शिक्षक और आध्यात्मिक गुरु हैं। पतियों ने देखा कि उनकी पतियों में कृष्ण के प्रति दिव्य अनुराग के कारण घर में, पति में, संतान में रुचि नहीं है, इसलिए उसी जन से उन पतियों ने उन स्त्रियों को अपना गुरु मान लिया, उन्हें पत्नियों या अपनी संपत्ति के रूप में मानना बंद कर दिया। अब ये पत्नी नहीं है, ये गुरु हैं उनकी। अब उनके पति क्या कहते हैं, इन स्त्रियों ने तो कुछ नहीं किया, इनका तो कोई पवित्रता का संस्कार भी नहीं हुआ, इन स्त्रियों ने दुजाति संस्कार भी नहीं प्राप्त किया और ब्रह्मचर्य का जीवन भी नहीं बिताया, ना इन्होंने कोई तपस्या की, ना ही शास्त्रों का मनन किया, अशुभ अनुष्ठानों में भी ये नहीं लगी, तो भी इनकी भक्ति भगवान कृष्ण के प्रति है, जो योगेश्वरों के ईश्वर हैं, और दूसरी ओर हम हैं जिन्होंने भगवान की भक्ति नहीं की और सब विधियों को संपन्न किया है, तो क्या फायदा हुआ। ना साम जाति संस्कारो ना निवासो गुरारती न तपो नातमी मानता न शौचम न क्रिया स्वभाव तथापि तम श्लोके कृष्णे योगेश्वरे स्वरे भक्तृढ़ान चास्माकं संस्कारादि मतमपि। तात्पर्य में लिखा है चेतन स्वामी के अनुसार पतियों को इसका ज्ञान नहीं था कि उनकी पत्नियां कभी कभी वृंदावन वासियों से सुनती थी कृष्ण के बारे में, फूल बेचने वाली जो मालिने हैं उनके मुख से कृष्ण के सौंदर्य और गुणों को सुनती थी। तो ये ब्राह्मण अपने पत्नियों को कृष्ण भक्ति, अपनी पत्नियों की कृष्ण भक्ति देखकर चकित थे, उन्हें इसका पता नहीं था कि ये भक्ति भगवान के शुद्ध भक्तों की संगति में भगवान के विषय में श्रवण करने का फल है। अब उनके पति क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं निस्संदेह हम लोग घर के कामों में व्यस्त होने के कारण अपने जीवन के असली लक्ष्य से पूरी तरह से भ्रमित हो गए, किंतु अब जरा देखो तो भगवान ने किस तरह इन सरल ग्वाल बालों के शब्दों से हमें सच्चे चरम गंतव्य का स्मरण दिलाया है, भगवान की कृपा इस सरल बालक आए थे हमको बताने के लिए भगवान का असली रास्ता, तो भगवान की तो इतनी कृपा, हम भगवान को भूले हुए थे, भगवान ने तो हमको इतना अवसर दिया। ननु स्वार्थ है विमूढ़ानां प्रमत्तानां गृहे हयां अहो न स्मारे आमासं गोप्य वाक्य सतां गतिहीन। अन्यथा भगवान तो पूर्ण काम है, उन्हें क्या जरूरत है हमारी सेवा की, भगवान को क्या जरूरत है, वो तो पूर्ण काम है, वो मोक्ष देने वाले और दिव्य आशीर्वादों के स्वामी परम नियंता हैं, उन्हें क्या जरूरत थी अपने साथियों को मैं हमारे पास भेजने की, हम तो सदैव उन्हीं के नियंत्रण में रहने के लिए ही हैं। अन्यथा पूर्ण काम कैवल्याद्याशिताम पते तात्पर्य लिखा है यद्यपि कृष्ण परम ब्रह्म है किंतु उन्होंने विनीत भाव से अपने ग्वाल मित्रों को ब्राह्मणों से भोजन मांगने के लिए भेजा, ऐसा करके उन्होंने ब्राह्मणों के अहंकार की पोल खोली कि कितने अहंकार उनको दिखाई दिया ना, ब्राह्मणों को दिखाई दिया कि उनके अंदर कितना अहंकार है, और उनकी पत्नियों को आकर्षित करके उन्हें अपनी शरण में लेकर अपने दिव्य सौंदर्य की स्थापना की। अब अभी ब्राह्मण लोग क्या कहते हैं, ये सब बातें हैं ब्राह्मण लोग कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, लक्ष्मी जी उनके चरण कमलों का स्पर्श पाने की आशा से सब कुछ एक तरफ रख करके, अपना गर्व छोड़ करके, चंचलता छोड़ करके एकमात्र उन्हीं की पूजा करती हैं, लक्ष्मी जी बहुत गर्व है ना, बड़े बड़े लोग झुकते हैं वो नहीं झुकती हैं लक्ष्मी जी, और लक्ष्मी जी चंचल भी बहुत हैं, हैं? किसी पर कृपा करते हैं फिर उसको छोड़ के दूसरे के पास जाते हैं, चंचला है, लेकिन अपने गर्व और चंचलता दोनों छोड़ करके एकमात्र इनकी पूजा करते हैं लक्ष्मी जी। ऐसे भगवान यदि याचना करें तो अवश्य ही बहुत बड़ा आश्चर्य है, ऐसे भगवान मांग रहे थे हमसे, कितने आश्चर्य की बात, कितनी उनकी दया है भगवान की, कितनी विनम्रता है भगवान की, कैसे भगवान जो लक्ष्मी जी जिनकी सेवा करते हैं वो हमसे मांग रहे हैं भोजन। हे त्वान्यान् भजते यमत्री पादस्पर्शा सया सक्रेन स्वात्म दोषापमर्गेण तद्याच्या जनमोहिनी। तात्पर्य लिखा है लक्ष्मी जी के परम स्वामी को स्वयं भोजन की याचना नहीं करनी पड़ती, जैसा कि यहां पर ब्राह्मणों ने संकेत किया है। अब ये ब्राह्मण लोग क्या कह रहे हैं है? कि ये सब उनको प्रसन्न करने के लिए होता है, क्या यज्ञ जितने यज्ञ हैं और शुभ स्थान है, शुभ समय, ताज सामग्री की विविध वस्तुएं हैं, वैदिक मंत्र हैं, ये सब उनकी प्रसन्नता के लिए होता है। पुरोहित हैं, यज्ञ की अग्नियां हैं, देवता हैं, यज्ञ हवि और यज्ञ के फल, ये सब उनके लिए हैं। यद्यपि हमने योगेश्वरम तो ईश्वर भगवान कृष्ण के विषय में कि सुना था कि उन्होंने यदुवंश में जन्म ले लिया है, किंतु हम इतने मूर्ख रहे इस श्री कृष्ण को साक्षात भगवान नहीं समझ पाए। देश काला प्रतंग द्रव्यम मंत्र तंत्र देवता यजमान धर्म से एव भगवान साक्षात विष्णु योगेश्वरेश्वर जातो विदिस्वात। तो इसके बाद फिर वो कहते हैं हम उन भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करते हैं जिनकी बुद्धि कभी मोहग्रस्त नहीं होती, और हम हैं कि माया द्वारा मोहित होकर सकाम करके मार्ग में, सकाम कर्म के मार्ग में भटक रहे हैं। तस्मै नमो भगवते कृष्णाया कुंठ मेधसे यन माया मोहित धियो भ्रमा महा कर्म वर्तमसु। अब प्रार्थना कर रहे हैं भगवान से कि वो हमें क्षमा करें, हम कृष्ण की माया से मोहग्रस्त थे, अतएव हम आदि भगवान के रूप में उनके प्रभाव को नहीं समझ सके, अब हमें आशा है कि वे हमारे अपराधों को क्षमा करें। वो क्षमा करें है? वो आशा करते हैं कि हमारे अपराधों को क्षमा करें। आशा क्यों करते हैं? क्योंकि उनकी पत्नियों को अगर कृपा, उनकी पत्नियों पर कृपा करी है तो हमारे ऊपर भी कृपा करेंगे। तदैन आद्य पुरुष सुमाया मोहितात्मना अभिज्ञातानुभावानां क्षन्तुम् अर्हति क्रमम्। इस प्रकार कृष्ण की उपेक्षा करने से उनका जो अपराध हुआ था उसका स्मरण करते हुए उनकी बड़ी उत्सुकता है कृष्ण का दर्शन करने की, उनको कृष्ण का दर्शन करने की बड़ी उत्सुकता हुई, किंतु उनकी हिम्मत नहीं हुई वहां जाने की, कृष्ण के पास जाने की, कम से भयभीत होने के कारण उनकी हिम्मत नहीं हुई कृष्ण के पास जाने की। इति स्वागम अनुस्मृत्य कृष्णे ते कृत हेलन दीक्ष वो ब्रज मथ कंसान दीता न चाचलन। तात्पर्य लिखा है उस प्रकार उनका साहस नहीं हुआ। तात्पर्य लिखा है भगवान कृष्ण के विरुद्ध अपने अपराध का अनुभव करते हुए अंततो गत्वा उनके सर्वशक्तिमान पद की प्रशंसा करते हुए ब्राह्मणों ने चाहा, क्या चाहा, कि ब्रज में जाकर के भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण करें, किंतु उन्हें भय था कि कंस के गुप्तचर उसे जाकर के बतलाएंगे कि ये ब्राह्मण कृष्ण के पास गए थे तो कंस उन्हें अवश्य मार डालेगा। ब्राह्मण पत्नियां कृष्ण भावनामृत में भाव मग्न थी और वे किसी प्रकार कृष्ण के पास चली गई थी। ये जो ब्राह्मण पत्नियां हैं तो पागलपन के कारण चली गई कृष्ण के पास, जैसे भी हो वो प्रेम में इतनी पागल थी कि उन्होंने आगे और पीछे को देखा नहीं और भाग के चली गई। लेकिन उनको तो आगे पीछे का भी विचार है, आगे क्या पीछे क्या होने वाला है, इसलिए वो नहीं जा पाए। तो जिस तरह गोपियां कृष्ण के साथ नृत्य करने के लिए अर्धरात्र में जंगली पशुओं से भरे जंगल में गई थी, किंतु ये ब्राह्मण कृष्ण भावनामृत के उस उच्च पद को प्राप्त नहीं थे, अतएव कंस के भय से भगवान का दर्शन नहीं कर सके। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के दशम स्कंध के अंतर्गत ब्राह्मण पत्नियों को आशीर्वाद फिर से 23वां अध्याय पूर्ण हुआ। अब है गोवर्धन पूजा, अध्याय 24वां है। सुखदेव गोस्वामी ने कहा उस स्थान पर ही अपने भाई बलदेव के साथ रहते हुए कृष्ण ने देखा, क्या देखा, कि जो बड़े बड़े गोप हैं उनके पिता आनंद महाराज भी और बाकी लोग हैं क्या कर रहे हैं, इंद्र यज्ञ की तैयारी कर रहे हैं, बहुत जोर शोर से तैयारी कर रहे हैं। ये जो यज्ञ है ये वार्षिक यज्ञ था, हर साल ये होता था इंद्र यज्ञ, तो जो साल में एक बार होता है तो उसकी तो काफी बड़ी धूमधाम होती है ना। अगर कोई हर सप्ताह होता है तो कोई खास तैयारी नहीं करती जाती है, अगर हर महीने होता है तो कुछ ज्यादा तैयारी करते हैं, लेकिन अगर साल में एक बार होता है तो बहुत तैयारी करते हैं। तो सालाना यज्ञ था, कई सौ सालों से चला रहा था, है ना, तो बहुत तैयारी हो रही है। भगवान अपित बल देव संयुत अपन्य वसन गोपान इंद्रियाद्यमान, तात्पर्य लिखा है कि भगवान कृष्ण ब्राह्मणों के उसी गांव में रहने लगे जिनकी पत्नियों ने अपनी भक्ति से उन्हें तुष्ट किया था। इस तरह उन्होंने उन ब्राह्मणों को और उनकी सती पत्नियों पर कृपा की जो अपने पत्नियों के सिवाय और किसी से संबंध नहीं रख सकती थी। उसी स्थान पर कृष्ण के पिता नंद महाराज और अन्य ग्वाले किसी न किसी तरह इंद्र यज्ञ की तैयारी कर रहे थे। तो ये जो है तात्पर्य सिद्ध स्वामी का है कि उस स्थान पर यज्ञ हो रहा था जहां ब्राह्मणों की पत्नियां रहती थी, और ये जो ब्राह्मण है वो मथुरा के थे ब्राह्मण, लेकिन कंस के भाई यहां रहते थे, उसी स्थान में भगवान भी यज्ञ की तैयारी, मतलब तैयारियां यज्ञ की हो रही है भगवान की इच्छा से यहां पर। अब भगवान तो सब कुछ जानते हैं, भगवान सर्वज्ञ हैं, तो भगवान पहले से ही सब कुछ जानते हैं। सर्वज्ञ होने के कारण भगवान कृष्ण पहले से ही सारी स्थिति जानते थे, परंतु विनीत भाव से उन्होंने अपने पिता नंद महाराज से पूछा, तदभिज्ञोपि भगवान सर्वात्मा सर्वदर्शन प्रस्त्रयावन तो पृछन वृद्धानंद पुरोगमान। अब भगवान जो है पूछते हैं, क्या पूछते हैं, हे पिता आप कृपा करके मुझे बतलाएं कि आप इतना सारा प्रयास किस लिए कर रहे हैं, आप क्या करना चाह रहे हैं, यदि यह कर्मकांड है तो यह किसकी तुष्टि के लिए किया जा रहा है और किन साधनों से यह संपन्न किया जाएगा। कथताम में पिता गोयम संभ्रमो वा उपागत किम फलम तस्य वो देशा के निवास आदिते मखहा। हे पिता कृपा करके मुझे बतलाइए, मुझे जानने की बड़ी इच्छा है और मैं श्रद्धा पूर्वक सुनने के लिए तैयार हूं। भगवान क्या कह रहे हैं, मेरी बहुत श्रद्धा है जानने की। जिसकी श्रद्धा उसी को तो बताना चाहिए, तो भगवान बड़ी श्रद्धा बता रहे हैं, दिखा रहे हैं कि आगे चल करके सब खंडन कर देंगे, लेकिन पहले बड़े श्रद्धा पूर्वक कह रहे हैं कि मैं जानना चाहता हूं, मेरी बहुत श्रद्धा है जानने की। तो भगवान कहते हैं मेरी बहुत श्रद्धा है जानने की, जो अपने जो अन्यों को अपने तुल्य मानते हैं, जिनमें अपना पराये का भेदभाव नहीं है, मित्र शत्रु को समान समझते हैं, उन संत पुरुषों को कुछ भी छिपा करके नहीं रखना चाहिए, आप जैसे संतों को कुछ छिपाना नहीं चाहिए। बता दो सबको, ये तंतु महान कामो मह्यम शुश्रू सवे पिता नहीं गोप्यम साधु नाम कृत्यम सर्वात्मनाम है अस्त स्वप दृष्टि नाम अमित्रो दास विद्युषाम। तात्पर्य लिखा है कि हो सकता है कृष्ण के पिता ने सोचा हो कि अभी छोटा सा बालक है तो वैदिक यज्ञ के विषय में ठीक से प्रश्न नहीं कर सकता, लेकिन कृष्ण की चतुराई भरे कथन ने नंद को आश्वस्त कर दिया कि कृष्ण का प्रश्न बड़ा गंभीर है, कोई ऊट पटान बात नहीं कर रहा है ये लड़का। इसे गंभीरता से उत्तर देना चाहिए है? तो भगवान क्या कहते हैं, जो उदासीन होता है उसे शत्रु की तरह, उससे शत्रु की तरह बचना चाहिए, किंतु मित्र को अपने ही समान समझना चाहिए। उदास हो निवन उदासीन और इवन वर्जन आत्मुष्टे। श्री जीव गोस्वामी के अनुसार नंद महाराज मौन खड़े थे और उन्हें अपने पितृ बिलगाओ की स्थिति पर संदेह हो रहा था, क्योंकि गर्ग मुनि ने भविष्यवाणी की थी कि नंद का पुत्र अपने गुणों में नारायण के समान होगा और ये युवा बालक पहले ही अनेक शक्तिशाली अस्त्रों को पराजित करके उनका वध कर चुका था। तो भगवान क्या कहते हैं, अभी भगवान और कह रहे हैं जब लोग कर्म करते हैं तो कभी वे समझते हैं कि वे क्या कर रहे हैं और कभी नहीं समझते हैं कि क्या कर रहे हैं। तो इस जगत में लोग कर्म करते हैं तो कभी तो जानते हैं कि क्या कर रहे हैं और कभी नहीं जानते, उन्हें कुछ पता नहीं होता ये वो क्या कर रहे हैं। जो लोग जानते हैं कि वे क्या कर रहे हैं उन्हें अपने कार्य में सफलता प्राप्त होती है, और जो नहीं जानते हैं तो उन्हें कोई सफलता नहीं मिलती, उन्हें पता ही नहीं चल रहा है कि क्या कर रहे हैं, अंधाधुंध करते जा रहे हैं लेकिन कुछ पता नहीं कि क्या कर रहे हैं। ज्ञात्वा ज्ञात्वा च कर्माणि जनोऽयं मनुतिष्ठति विदुषा कर्म सिद्धिस्याम यथा नाम विदुषो भवेन। तात्पर्य भगवान यहां अपने पिता को बता रहे हैं कि लोगों को चाहिए कि वे अपने मित्रों से परामर्श करके कोई विशिष्ट उत्सव संपन्न करें, परंपरा का अंधानुकरण नहीं करना चाहिए अंधे की तरह। जो व्यक्ति यह नहीं जानता कि वो क्या कर रहा है उसे सफलता क्या मिलेगी। इस श्लोक में भगवान का यही महत्वपूर्ण तर्क है, क्योंकि नंद के पुत्र श्री कृष्ण से अपने पिता के धार्मिक कृत्य में उत्साह दिखाने की आशा स्वाभाविक थी, अतएव पिता का कर्तव्य था कि वे पुत्र से पूरी व्याख्या करते अपने पुत्र को पूरा समझाएं। अब भगवान क्या कहते हैं, ऐसा होने से आप मुझे स्पष्ट रूप से अपने अनुष्ठान को बतला दें, क्या यह उत्सव शास्त्र सम्मत है या केवल साधारण समाज की एक रीति है। तत्र तावन् क्रियायोगो भवतां किं विचारितः अथवा लौकिकस्तम्यं पृच्छता साधो भण्यताम्। अब नंद महाराज ने उत्तर दिया, नंद महाराज क्या कहते हैं कि बेटा महान भगवान इंद्र वर्षा के नियंत्रक हैं। महान भगवान इंद्र वर्षा के नियंत्रक हैं, ये बादल उनके भेजे हुए हैं और वर्षा करते हैं जिसे सब प्राणियों को सुख और जीवन प्राप्त होता है। पर्जन्यो भगवान इंद्रो मेघा सस्यात्म मूर्तियां यदि वर्षन्ति भूतानां प्रेरणम जीवनम पयाम। तात्पर्य में लिखा है शुद्ध वर्षा जल के बिना पृथ्वी ना तो किसी को भोजन दे सकती है और ना पीने का पानी दे सकती है और कहीं स्वच्छता भी नहीं रह सकती है। वर्षा इससे पता चलता है कि कितनी महत्वपूर्ण है, वर्षा के बिना कैसे मतलब ये सब स्वच्छ रहेगा। वर्षा ऋतु में कीचड़ ज्यादा हो जाता है, लेकिन आप सोचिए ना कि सब कुछ स्वच्छ होता है, जितना जैसे पेड़ है इनमें जितना धूल है वो सब धो जाती, कीचड़ तो नीचे रहता है लेकिन बाकी ऊपर की सब चीजें स्वच्छ होती हैं, जितने पर्वत हैं सब स्वच्छ होते हैं वर्षा के कारण, वृक्ष हैं पर्वत हैं सब स्वच्छ होते हैं। अब भगवान नहीं नंद महाराज भगवान से क्या कहते हैं, हे पुत्र केवल हम ही नहीं अपितु तो अन्य लोग भी इन वर्षा करने वाले बादलों के स्वामी की पूजा करते हैं। बादलों के स्वामी यानी इंद्र हम उन्हें अन्न और अन्य पूजा सामग्री भेंट करते हैं और ये वर्षा जो है ना उनके वीर से उत्पन्न होती है। तम तात वे चाम वार पत्नी स्वरम द्रव्य चंद्रे दशा सिद्धे कृत आगे नंदी जी कहते हैं इंद्र के लिए संपन्न यज्ञों से बचे जूठन को ग्रहण करके लोग अपना जीवन पालन करते हैं और धर्म अर्थ और काम रूपी तीन लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। इस प्रकार इंद्र उद्यमी पुरुषों की सफलता के लिए उत्तरदायी हैं। तच्छे से लोप जीवंती त्रिवर्ग फले तले पुंसाम पुरुषकाराणाम पर्जन्य फल भावना। तो इसके तात्पर्य में लिखा है कि कोई याचित कर सकता है कि लोग कृषि आदि के द्वारा अपना भरण करते हैं किंतु सारे मानवीय प्रयास भोजन और पेय पर आश्रित होते हैं जिन्हें पर्याप्त वर्षा के बिना उत्पन्न नहीं किया जा सकता। आगे ये सब बातें कौन कह रहा है? नंद महाराज क्या कह रहे हैं? ये धर्म स्वस्थ परंपरा पर आश्रित है। जो कोई काम से या शत्रुता से या भय से या लोभ से इसको नहीं करता है उसे सौभाग्य प्राप्त नहीं होता है। तैनम सजे धर्म परंपरियागतम नरः कामाद्वेषान भया लोभान सवेनाप्नोति शोभनम। अब सुखदेव गोस्वामी कहते हैं जब भगवान केशव ने अपने पिता नंद और ब्रज के अन्य गुरुओं के कथनों को सुना तो इंद्र के प्रति क्रोध उत्पन्न करने के लिए उन्होंने अपने पिता को इस प्रकार संबोधित किया। इंद्र को क्रोधित करने के लिए भगवान ने कहा वचो निशम्य नंद्रजो इंद्राय मन्युम जनयन पितरम प्राहे केशव। तात्पर्य में शिलाशेखर स्वामी बतलाते हैं कि भगवान कृष्ण की आंतरिक इच्छा न केवल एक देवता का अपमान करने की थी अपितु उस मिथ्या गर्भ को ढा देने की थी जो भगवान के उस क्षुद्र सेवक के मन में उत्पन्न हुआ था जो इंद्र के रूप में भगवान का प्रतिनिधित्व कर रहा था। इंद्र अपने को भगवान समझ रहे थे तो भगवान जो है इंद्र के उस गर्भ को खंडित करना चाहते हैं इसलिए ऐसा बोल रहे हैं। इस प्रकार भगवान कृष्ण गोवर्धन पर्वत उठाकर गोवर्धन पूजा का शुभारंभ करेंगे और अपने प्रिय भक्तों के साथ उस पर्वत के नीचे अनेक दिनों तक बसे रहने की मनमोहक लीला का आनंद लूटेंगे। अब भगवान क्या कहते हैं? भगवान कहते हैं कर्म से ही जीव जन्म लेता है और कर्म से ही उसका विनाश होता है। उसके सुख दुख भय और सुरक्षा ये सब कर्म से ही होते हैं। कर्म ना जाए ते जंतु कर्म नीयते सुखम दुखम वयम से कर्म भी पंजते। यदि कोई परम नियंता हो भी देखो भगवान कैसे नास्तिकों जैसी बातें कर रहे हैं कहते हैं कर्म से ही होता है ना। यदि कोई परम नियंता हो भी जो अन्यों को उनके कर्मों का फल प्रदान करता हो तो भी कर्म करने वाले पर आश्रित है। जब तक सकाम कर्म संपन्न ना हो तब तक जो है ना वो दे कैसे सकता है फल। अस्ति चेदि स्वरा कश्चिन फल रूपेण कर्म कर्तारं भजते सोपि नेह कर्तुहि प्रभुरिहि सहम। इस जगत में जीवों को अपने किसी विशेष पूर्व कर्म के परिणामों का अनुभव करने के लिए बाध्य किया जाता है क्योंकि इंद्र किसी तरह भी मनुष्यों के भाग्य को बदल नहीं सकते जो उनके स्वभाव से उत्पन्न होता है फिर लोग उनकी पूजा क्यों करें। इस तरह से भगवान ने इंद्र की पूजा का विरोध किया इसलिए नहीं कि इंद्र भगवान नहीं है। भगवान अगर इंद्र है या कोई भी भगवान है ना तो जरूरत क्या है पूजा करने की जरूरत क्या है। किमिंद्रेणे भूतानां स्वस्वकर्मानुवर्तिनां अनिशेनां यथा कर्तुं स्वभावो विहितं नृणां। प्रत्येक व्यक्ति अपने ही स्वभाव के अधीन है और उसे उस स्वभाव का ही पालन करना चाहिए। देवताओं, असुरों तथा मनुष्यों से युक्त ये संपूर्ण जगत जीवों के स्वभाव पर ही आश्रित है। स्वभावतंत्रो हि जनः स्वभावम् अनुवर्तते स्वभावस्थमिदं सर्वं सदेवासुर मानुषम्। क्योंकि कर्म के ही फलस्वरूप बद्ध जीव उच्च या निम्न शरीरों को स्वीकार करता है और फिर त्याग देता है, अतः ये कर्म ही उसका शत्रु या मित्र है, उसका गुरु और ईश्वर है, कर्म ही है। देहानुच्चावचान जंतु प्राप्यो त्रियति कर्मणां शत्रुर्मित्र मदासीना कर्मेव गुरुरीश्वरः। अतः मनुष्य को चाहिए कि वह कर्म की ही खींच से पूजा करे, उसे अपना स्वभाव बनाए रखना चाहिए और अपने ही कर्तव्य का निर्वाह करना चाहिए। निस्संदेह जिससे हम अच्छी तरह रह सकते हैं वही वास्तव में हमारा पूज्य अर्चा विग्रह है। अब भगवान धीरे धीरे गोवर्धन की पूजा पर आ रहे हैं ना, तो क्या कह रहे हैं, पूजा में उसकी करना चाहिए जो हमें ठीक से जीवन की सुविधाएं प्रदान करें। तो फिर कहां जाएंगे, गोवर्धन पर्वत में आएंगे। गोवर्धन पर्वत हमें जीवन की सुविधाएं जो प्रदान करता है हम तो उसकी पूजा करेंगे है? और किसी ईश्वर की जरूरत क्या है, इंद्र ईश्वर हो या कोई भी ईश्वर हो, जरूरत क्या है उसको जानने की। तस्मात् संपूज्ये कर्मं स्वभावस्था सुकर्म कृत् अंधसा येन वर्तेत तदेवास्य हि दैवतम्। तात्पर्य लिखा है यहां पर भगवान कृष्ण इस आधुनिक बेहूदे सिद्धांत का कि हमारा कर्म ये काम धंधा ही असली ईश्वर है और हमें केवल अपने कर्म की पूजा करनी चाहिए, इसी का सुझाव दे रहे हैं। आजकल का ये बेहूदा सिद्धांत है, भगवान कृष्ण इसका सुझाव दे रहे हैं। ये गीता का उपदेश नहीं है भगवान का, ये ब्रजवासियों को उपदेश है। ब्रजवासी लोग बहुत ऊपर के धरातल पर हैं, बहुत ऊपर के धरातल पर हैं। हाँ, आगे भगवान क्या कहते हैं, जो वस्तु वास्तव में हमारे जीवन का निर्वाह करती है यदि हम उसे छोड़कर अन्य वस्तु की शरण ग्रहण करते हैं तो भला हमें कैसे लाभ प्राप्त होगा। हम उस कृतज्ञ स्त्री की भांति होंगे जो जार पति के साथ प्रेमालाप करके कभी अपने असली लाभ नहीं उठा सकती है। आजीव्य के तरम भावम यस्तुन्यमुपजीवति न तस्मान् विन्दते क्षेमं जारां नार्ये सति यथा। शिवजीव गोस्वामी के अनुसार बालक कृष्ण ने अपने पिता और अन्य गुरु जनों के समक्ष जो जेठाई दिखलाई उसे उस दिव्य क्रोध का प्रदर्शन मानना चाहिए जो अपने नित्य भक्तों द्वारा एक नगण्य देवता का पूजन करते देखकर उनमें प्रकट हुआ था। ये जेठाई भगवान कृष्ण ना बड़ा उल्टा सीधा सिद्धांत बोल रहे हैं। तो इसमें जीव गोस्वामी क्या कहते हैं कि इसे भगवान का दिव्य क्रोध का प्रदर्शन मानना चाहिए, क्योंकि उनके जो भक्त हैं किसी देवता की पूजा करते हैं तो भगवान को अच्छा नहीं लगता है, इसलिए उल्टा सीधा बात भगवान ही बोल रहे हैं। ब्राह्मण वेदों का अध्ययन करके और अध्यापन करके और जो शासक यानी क्षत्रिय हैं ये पृथ्वी की रक्षा करके और वैश्य व्यापार करके और शूद्र अपने ऊंचे श्रेणी के लोगों की सेवा करके अपना जीवन निर्वाह करता है। वर्तेत ब्रह्मणा विप्रो राजन्यो रक्षया भूमः वैश्यस्तु वार्तया जीवेन शूद्रस्तु दिव्य सेवया। अब हम लोग तो वैश्य हैं, भगवान कहते हैं, तो वैश्यों का कर्म क्या है, कृषि व्यापार गोरक्षा और लेन देन। हम इनमें से केवल गोरक्षा में लगे रहते हैं। कृषि वाणिज्य गोरक्षा कुसीदूर्यमुच्यते वार्ता चतुर्विधा तत्र वयम गो वृत्तयो निशम्। और ये सृष्टि जो है ये पूरे संसार का सृजन पालन और संहार कैसे होते हैं, प्रकृति के तीन गुणों से, सतोगुण रजोगुण और तमोगुण से। रजोगुण से ब्रह्मांड उत्पन्न होता है, और संभोग द्वारा ये विविध प्रकार से पैदा होता है। सत्वम रजस्तम इति स्थित्युत्पत्त्यन्त हेतमः रजसो उत्पन्न तेजसम अन्योन्यम विविधम जगत्। आगे रजोगुण द्वारा प्रेरित बादल सर्वत्र अपने जल की वर्षा करते हैं और इस वर्षा से ही सारे प्राणियों की जीव का चलती है। इस व्यवस्था से भला इंद्र को क्या लेना देना है? इंद्र का संबंध ही कहाँ है? हमें तो इस पर विचार करना चाहिए। रजसाचोरिता मेघा वर्षन्तम्बूनि सर्वतः प्रजातैरेव सिध्यन्ति महेन्द्रः किं करिष्यति। हे पिता, हमारे घर ना तो नगर में है, ना कस्बों में है, ना गांवों में है। कहां पर है? जंगल में। वनवासी होने से हम सदैव जंगल और पर्वतों में रहते हैं। आगे ना पर्वत में। हम लोग वनवासी हैं, पर्वत की पूजा करें हम लोग। नन रहा पुरोजन पता ग्राम गृह वयम अनौकत नित्यम वन शैल निवासी नहा। तो तात्पर्य लिखा है कि भगवान कृष्ण यहां ये बता रहे हैं कि वृंदावन वासियों को गोवर्धन पर्वत और वृंदावन के जंगलों से अपने संबंध को समझना चाहिए। इंद्र जैसे किसी लघुए भगवे देवता की परवाह नहीं करनी चाहिए। अतः गौओं ब्राह्मणों और गोवर्धन पर्वत के आनंद के लिए यज्ञ का आरंभ करो। गौओं का और ब्राह्मणों का और गोवर्धन पर्वत का आनंद जो ना होना चाहिए। इंद्र के पूजन की जितनी सामग्री है उसी से वो यज्ञ करो। तस्मात् गवाम ब्राह्मणानां अद्रेशानभ्यतां मखा इंद्रयाग संभारा तैरयम साधतां मखा। अब भगवान बताते हैं कि क्या करना चाहिए। खीर से लेकर के तरकारी के शोरबा तक के विविध पकवान तैयार किए जाए। अनेक प्रकार के बढ़िया पापड़ बनाओ। क्या बनाओ? पापड़ बनाओ और सैको तलो और सैको और दूध के जितने पदार्थ मिल सके ये सब इकट्ठे करो। दूध के पच्चिताम निविधा पाका सुपांता पायसा देह संयावा कोप सस्कुल्या सर्वे दोहश्चाग्रियताम। लिखा है सूप ये क्या है? छीनियों के सोरबे और रसदार तरकारियां। और गोवर्धन पूजा के लिए भगवान कृष्ण ने सोरबा जैसा गर्म पकवान, खीर जैसा ठंडा व्यंजन और सभी प्रकार के दूध की वस्तुएं एकत्र करने के लिए कहा है। और क्या करना है? वैदिक मंत्रों में जो निपुण ब्राह्मण है वो यज्ञ की अग्नियों को ठीक से आवाहन करें और आप लोग पुरोहितों को उत्तम भोजन कराओ और गौएं और भेंटें दान करो। हुए ताम्यंग ब्राह्मण अन्नम बहुगुणम तेभ्यो देयम् बोधेनु दक्षिणा। और फिर भोजन दो तो किसको भोजन दो? कुत्तों और चांडालों तक सबको भोजन प्रदान करो। सब प्रकार के प्राणियों को भोजन दो और फिर उसके बाद आप लोग भोजन खाओ। गौओं को घास खिलाओ और गोवर्धन पर्वत को अपनी भेंट चढ़ाओ। अन्येभ्यश्च सुचाण्डाल पतितेभ्यो यथारहतः जवसं च गवां दत्त्वा गिरये दीनां बलिः। इंद्र को कुछ भी देने की जरूरत नहीं है। इंद्र को कुछ देने की जरूरत नहीं है, बाकी सबको दो। इंद्र से हमें कोई संबंध ही नहीं है। इंद्र से हमारा कोई संबंध लेन देन नहीं है, कुछ भी नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। भरपेट भोजन करने के बाद हर व्यक्ति को वस्त्र आभूषणों से सजो। सब कोई भोजन के बाद से वस्त्र आभूषण धारण करो और अपने शरीर में चंदन लेप लगाओ और फिर गौओं ब्राह्मणों और गोवर्धन पर्वत की प्रदक्षिणा करो। अच्छा, खा पी करके, खूब बढ़िया खा पी करके फिर गोवर्धन पर्वत की प्रदक्षिणा खा पी करके फिर अच्छे सजो श्रृंगार करो, हाँ, अच्छे कपड़े पहन करके आभूषण धारण करके फिर गोवर्धन की परिक्रमा करो। फलंकृता भुक्तवंत सुनिता सुवास प्रदक्षिणा चकुरुत गोवि प्राणल पर्वता। तात्पर्य लिखा है भगवान कृष्ण चाहते थे कि सारे मनुष्य और पशु तक उत्तम भगवत प्रसाद अर्थात भगवान को भेंट किए हुए शुद्ध भोजन खाएं, अपने परिजनों को प्रफुल्लित बनाने के लिए उन्होंने सुंदर वस्त्र आभूषणों से सजने के लिए कहा और चंदन लेप करने के लिए कहा, किंतु मुख्य कार्य क्या है, पवित्र ब्राह्मणों गौओं और गोवर्धन पर्वत की प्रदक्षिणा करना। हे पिता, ये मेरा विचार है, यदि आपको अच्छा लगे तो आप ऐसे कीजिए। ये मेरा विचार है, मुझे तो ये अच्छा लगता है, बाकी आपको जो अच्छा लगे तो वैसा करो, मुझे जो अच्छा लगता है वो मैंने बता दिया। ऐसा यज्ञ गौओं को बहुत प्रिय होगा, ब्राह्मणों को और गोवर्धन पर्वत को और मुझको भी बहुत प्रिय होगा। भगवान ने कहा इंद्र, अब इंद्र को प्रिय ना लगे वो दूसरी बात है, भाई मुझे तो अच्छा यही लगता है, गोवर्धन पर्वत को और गौओं को ब्राह्मणों को ये अच्छा लगता है। मतम तात है क्रीताम विरोचते अयम गो ब्राह्मणा त्रीणाम मह्यम जतय तो मखा। तात्पर्य लिखा है ब्राह्मणों गौओं और स्वयं भगवान को जो भी अच्छा लगे वही शुभ है, अखिल विश्व के लिए लाभदायक है। हरे कृष्णा लहर गई। तो सुखदेव गोस्वामी ने कहा भगवान शक्तिमान काल है, कृष्ण इंद्र के मिथ्या गर्भ को नष्ट करना चाहते थे, जब नंद और वृंदावन के वृद्धों ने श्री कृष्ण का वचन सुना तो उन्होंने उसे उचित मान लिया। काल आत्मना भगवता सकृदन पै जिघंत प्रोक्तम ने सम्य नंदा दिया साधु ग्रहण तो नंद आदि गोप क्या बोले, साधु साधु साधु, कृष्ण ने जब कहा कि ये मुझे अच्छा लगता है, गौओं को अच्छा लगता है, ब्राह्मणों को अच्छा लगता है, तो सुन कहा भी तो इससे अच्छा और क्या है, छोड़ो फिर इंद्र को। बहुत अच्छी बहुत अच्छे। तत्पश्चात उन सब गोपों ने मधुसूदन द्वारा प्रस्तावित सब कुछ पूरा किया, शुभ वैदिक मंत्रों का वाचन करने के लिए ब्राह्मणों की व्यवस्था की और इंद्र के यज्ञ के लिए जो सामग्री थी वो गोवर्धन पर्वत और ब्राह्मणों को भेंट करी, गौओं को घास दिया और गौओं और बैलों और बछड़ों को आगे करके गोवर्धन पर्वत की प्रदक्षिणा की। तथा चाविदधु सर्वं यथा है मधुसूदन वाचयित्वा स्वस्तेनं तद्रव्येण गिरिद्विजां उपहृत्य बलीन समजन आद्रतायम संगमां गोधनानी पुरस्कृत गिरिम चक्रु प्रदक्षिण। बैलों द्वारा खींचे हुए छकड़ों में चढ़कर सुंदर आभूषणों से अलंकृत गोपियां भी साथ होली और कृष्ण की महिमा का गान करने लगी, उनके गीत ब्राह्मणों के आशीषों में जा मिले। गोपियां पैदल नहीं चल रही हैं, किसमें चल रही हैं, बैलगाड़ियों में बैठ करके चल रही है। दूसरा गोवर्धन की परिक्रमा बहुत लंबी थी, इतनी छोटी नहीं थी। अनांचना दुक्तानी के चारो सुलंकृता गोप्य कृष्ण मीरियाणी गायंत्या साधु जाशिता। तो अब चूंकि समय समाप्त हो रहा है तो श्लोक संख्या 34 पर ही हम विश्राम कर रहे हैं और अगली कक्षा में श्लोक संख्या 35 से पाठ करेंगे, जिसमें भगवान कृष्ण बहुत बड़ा रूप धारण करके और अपना परिचय देते हैं गोवर्धन पर्वत के रूप में और सब भोग ग्रहण करते हैं। धन्यवाद।